ایسی خدمت ہے جاسوسی دنیا ناول نمبر 109 بھیڑیے کی آواز پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. آئیے سنتے ہیں پارٹ 2.
شکریہ جناب, اس نے نوٹ وصول کر کے حمید کو تعظیم دی اور باہر چلا گیا اور اب سمدانی بھرا ہوئی آواز میں بولا, میں اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں کہ تمہاری شادی ظفر یاد کی بیٹی سے ہو سکے. مجھے معاف کرنا, میں تمہیں تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جاگیردارانہ نظام والی تہذیب کو طے کر رکھو, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ہوں لیکن کیا تم اس بدتمیز لڑکی سے نباہ کر سکو گے؟ بدتمیزوں کو باتمیز بنانا میری ہابی ہے. ٹھہرو, تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود تمہارے لیے کافی بناؤں گا. بہت بہت شکریہ, میں بہت تھک گیا ہوں پرنس, اور یہاں کے لوگوں کے اتوار نے میرے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے. فکر نہ کرو, ہر تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا, حمید نے کہا اور اٹھ کر کافی بنانے لگا. سمدانی نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا, کاش میں کسی ذریعے سے اقتدار الدولہ بہادر کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر سکتا. میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کسی قسم کا الزام آئے. میں کہتا ہوں ہر اندیشے کو اپنے ذہن سے جھٹک دو, پورے حالات کا علم ہو جانے کے بعد سب کچھ مجھے کرنا ہے. تو پھر میں بری ذمہ؟ قطعی, حمید نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. تم کافی پی کر سونے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی اور کافی ختم کر کے سمدانی بستر پر جا لیٹا تھا. قریب 10 منٹ بعد حمید نے اس کے خراٹے سنے. وہ فریدی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین تھا. اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ سمدانی بے خبر سو رہا ہے, وہ پھر باتھ روم میں داخل ہوا اور اکوی کھڑکی کھول کر ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ باہر سے دیکھا نہ جا سکے. پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا سوئچ آن کیا اور ہلکی آواز میں فریدی کو پکارنے لگا. ہیلو ہارڈ سٹون, ہارڈ سٹون, اٹ از ہارڈ سٹون. میں نے بوڑھے سے ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں. اس کے بیان کے مطابق ہمارے ساتھ یہاں سرد مہری کا برتاؤ ہوا ہے. اس مہمان خانے میں ہمیں جگہ ملی ہے جہاں دولت اقبال کے دعاگو ٹھہرائے جاتے ہیں. اوور, صبر سے کام لو, تمہارے لیے دلچسپیاں ہوں گی. اوور. اس کے بعد حمید نے اسے بتایا کہ کس طرح اتفاقاً لڑکی سے ٹرین ہی میں ملاقات ہو گئی تھی. اچھی علامت ہے دوسری طرف سے آواز آئی. ویسے وہ ابھی تک ریلوے اسٹیشن ہی پر ریل کار کی منتظر ہے. اگر تم اسی وقت خان تک پہنچنا چاہتے ہو تو باہر نکلو اور مہمان خانے سے بائیں جانب چل پڑو. قریباً 200 قدم کے فاصلے پر داہنی جانب ایک اور راستہ ملے گا جس کا اختتام ایک چھوٹے سے پارک پر ہوا ہے. پارک کے فاٹک پر جو آدمی ملے اس سے اتنا کہہ دینا کہ تم مہمان ہو, وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کر دے گا. ذرا ٹھہرو. ہاں, تم آدھے گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہو سکتے ہو. اوور. کیا میرا ہونے والا خسر بہت زیادہ بیمار ہے؟ اوور, خفقان کا مریض ہے, وہ لوگ اسے باہر نہیں نکلنے دیتے. تم اگر کسی طرح اس تک پہنچ سکو تو بہتر ہے. اوور اینڈ آل. دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی اور حمید طویل سانس لے کر سوئچ آف کر دیا. کمرے میں واپس آ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مہمان خانے سے نکل ہی رہا تھا کہ دربان نے اسے ٹوکا. پیٹ میں کچھ گرانی سی محسوس کر رہا ہوں, اسی لیے کچھ دیر ٹہلنے کا ارادہ ہے, حمید بولا. کیا آپ کے پاس رات کو باہر نکلنے کا اجازت نامہ ہے؟ ہے تو بھائی, لیکن میرے ساتھی کے پاس ہے اور وہ بے خبر سو رہا ہے. تب تو مجھے افسوس ہے جناب, بڑی عجیب بات ہے, مہمان پر اس قسم کی پابندی آج تک نہ دیکھی نہ سنی. آپ برائے کرم اندر تشریف لے جائیے, دربار نے سخت لہجے میں کہا. صورت سے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا. اچھا میرے مہربان دوست, حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور واپسی کے لیے مڑ گیا. کمرے میں پہنچ کر 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر فریدی سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا. آخر تھک ہار کر اس نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا. دن بھر کی تھکن گنودگی کی گود میں جا لیتی لیکن نیند کے غلبے سے قبل ہی کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی. وہ اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کو گورتا رہا. پھر اونچی آواز میں پوچھا, کون ہے؟ جواب میں گراہٹ سنائی دی. یقیناً وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی گراہٹ تھی. باپ اور بیٹا. گراہٹ ہی کے ساتھ لوگوں کی چیخیں بھی سنائی دینے لگی. شور اتنا بڑا کہ سمدانی کی نیند بھی اچٹ گئی. حمید کو نہایت آرام سے آرام کرسی پر نیم دراز دیکھ کر بولا, آپ نے شاید یہ بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ معاملہ کیا ہے. کچھ بھی ہو, ہمارے آرام میں خلل پڑا ہے, ہم ان نالائکوں کو ہرگز معاف نہ کر سکیں گے. मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बाहर निकलकर देखिए तो क्या मामला है, आप खुद ही तकलीफ फरमाइए, हमीद ने जहरीले लहजे में कहा। अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर रहम करे। हमीद ने सूटकेस से 410 बोर की दो नाली बंदूक निकाली और कारतूसों की पेटी गले में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि फिर किसी ने दरवाजा पीटा। अब न भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दी थी और न कोई चीख। कौन है? हमीद ने दरवाजे के करीब पहुंचकर ऊंची आवाज में पूछा। दरवाजा खोलिए जनाब, बाहर से सहमी हुई सी आवाज आई। यह उसी शरीफ-उल-नफ्स वेटर की आवाज थी जिसे हमीद ने 10 रुपए टिप किए थे। उसने जल्दी से बंदूक स्लीपिंग पजामे में अड़स कर ऊपर से कमीज छोड़ दी और कारतूसों की पेटी पलंग के नीचे डालकर दरवाजा खोला। वेटर बुखलाए हुए अंदाज में दाखिल हुआ और खुद ही इस तरह दरवाजा बंद करने लगा जैसे मुल्कुल मुक्त ताकुब में हो। उसने जल्दी से बंदूक स्लीपिंग पाजामे में अड़स कर ऊपर से कमीज छोड़ दी और कारतूसों की पेटी पलंग के नीचे डालकर दरवाजा खोला। वेटर बौखलाए हुए अंदाज में दाखिल हुआ और खुद ही इस तरह दरवाजा बंद करने लगा जैसे मुल्कुल मौत ताकुब में हो। फिर मुड़कर हकलाया, आप लोग बखैरियत है ना? बैठ जाओ, हमीद ने उसका बाजू पकड़कर आराम कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हो, जरा दम ले लो। वेटर बुरी तरह हांफ रहा था। हमीद खड़ा रहा, बंदूक की वजह से बैठ नहीं सकता था। क्या किस्सा था? समदानी ने वेटर को मुखातिब किया। खामोश रहो, उसे दम लेने दो, हमीद हाथ उठाकर बोला। 2-3 मिनट तक गहरी खामोशी रही, फिर वेटर भराई हुई आवाज में बोला, इस मेहमान खाने पर पहली बार उसका हमला हुआ था। मेरे खुदा कितना भयानक था, मैंने जिंदगी में पहली बार भेड़िया देखा। भेड़िया? हमीद के लहजे में हैरत थी। जनाब आली, क्या आपने आवाज नहीं सुनी थी? मैं समझा था शायद कोई लड़की है। लड़की? वेटर की खौफजदगी हैरत में तब्दील हो गई। हाँ हाँ, हमारी तरफ लड़कियाँ इस तरह गुर्राती हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं जनाब? पहाड़ों के देश से, जहाँ की लड़कियाँ भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। वो भेड़िया ही था जनाब, मनहूस भेड़िया जो 100 साल से इस खानदान पर मुसल्लत है। क्या मतलब? लेकिन वेटर हमीद के सवाल का जवाब देने के बजाय खुद कलामी में मुब्तला नजर आया। लेकिन उसने मेहमान खाने का रुख क्यों किया? वो तो सिर्फ महल सरा में देखा जाता था। मेरे दोस्त, तुम मुझे उलझन में मुब्तला कर रहे हो। जी? वेटर चौंक पड़ा। परदेसियों से अधूरी बातें नहीं की जाती साहब, ये एक लंबी कहानी है। कुछ भी हो मैं जरूर सुनूंगा। और फिर वेटर ने एतमाद दौला और खानदौरा की कहानी शुरू कर दी। हमीद पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा, वो अब भी उसी जगह खड़ा था। वो कहानी खत्म कर चुका तो समदानी ने कहा, मैंने पहले तो कभी ये नहीं सुना कि कसरे दौरा में कोई भेड़िया दिखाई दिया हो। पिछले साल तक ये बात ढकी छुपी रही थी जनाब, लेकिन जब महल के बाहर का एक आदमी उसका शिकार हुआ तो सबको मालूम हो गया। हूँ तो तुम्हारे ये ख्याल है कि ये वही भेड़िया है जिसे खान दौरान ने गोली मारी थी? हमीद ने पूछा। सिर्फ मेरा नहीं, सबका यही ख्याल है जनाब। वैसे महल सिरा वाले उसकी तरदीद ही करते रहते हैं। खैर होगा, ये बताओ यहाँ भेड़िए ने किसी को जख्मी तो नहीं किया? बस बावर्ची बाल बाल बच गया। वो बावर्ची खाने की खिड़की में से अंदर दाखिल हुआ था और उधर ही से भाग भी गया। चलो मैं देखूंगा। नहीं जनाब, मुझे यहीं रहने दीजिए जब तक महल सिरा से कोई यहाँ ना पहुँच जाए। फोन किया गया है? ओहो, क्या यहाँ फोन भी मौजूद है? इस छोटे से किले में क्या नहीं है जनाब, खान ने उसे एक छोटा सा शहर बना दिया है। हमीद ने फिर कोई सवाल ना किया, उन्हें वही छोड़कर बाथरूम में दाखिल हुआ और बंदूक कॉस्मेटिक्स की अलमारी में छुपा दी। रात के 2 बजे थे, उसने सोचा जरूरी नहीं कि इस वक्त भी ट्रांसमीटर के जरिए फरीदी से रابطہ कायम किया जा सके। वो फिर कमरे में वापस आ गया और अब इस फिक्र में था कि वेटर की नजर बचाकर किसी तरह कारतूसों की पेटी भी मुसहरी के नीचे से निकाल ले। दफतन किसी पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ पुलिस भी है? समदानी ने वेटर से पूछा। खान की स्पेशल पुलिस, जिसके सरबराह उनके भतीजे सरदार जेगम हैं। खान के भतीजे? समदानी उछल पड़ा। लेकिन उनके तो कोई दूसरा भाई नहीं है, बीवी के भतीजे को आप क्या कहेंगे? जनाब, सरदार जेगम खुद ही तशरीफ लाए होंगे, वो खुद ही हर मामले को देखते हैं। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। जरूर जरूर, हमीद बिस्तर से उठता हुआ बोला। उसने वेटर को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम से बंदूक लाकर कारतूसों की पेटी समेत सूटकेस में रख दी और ऐश ट्रे में पाइप की राख झाड़ कर लेट गया। पता नहीं हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं, समझानी भराई हुई आवाज में बोला। लेट जाओ देखा जाएगा, हमीद ने कहा और करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। फिर शायद करीबन 10 मिनट बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। कौन है? हमीद झल्लाकर चीखा। दरवाजा खोलो, गूंजदार आवाज और सख्त लहजे में कहा गया। हमीद ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक कद आवर नौजवान खड़ा था। उसके जिस्म पर चीते की खाल कैसे कपड़े की कमीज और स्याह पतलून थी। भारी जबड़े शफाक तबीयत की गम्माजी कर रहे थे। आंखों में सुर्खी के साथ साथ वहशत भी थी। उसके पीछे दो मुसल्ला आदमी खड़े थे। तुम लोग कहाँ से आए हो? उसने हमीद को घूरते हुए पूछा। दारुल हुकूमत से। क्यों आए हो बताओ? हमीद ने समदानी को ललकारा। समदानी लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे आया और कांपती हुई आवाज में बोला, हमें इक्तदारुल दौला बहादुर ने भेजा है। ओहो अच्छा, ये प्रिंस इफ्तिखार हैं। ओ हेलो, उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी से हमीद से मसाफिया किया। यकीनन वो खास ताकतवर आदमी था, हमीद ने महसूस किया। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? क्या आपने अफसर मेहमानदारी को नहीं बताया था कि आप कौन हैं? ये तो नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि हमें इक्तदार दौला बहादुर ने खान की अयादत को भेजा है। तब तो उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अब आप दोनों हजरात बराह करम मेरे साथ चलिए। मुझे बेहद अफसोस है कि आपके शाया निशान इस्तकबाल ना हो सका। कोई बात नहीं, हमीद ने कहा। अब वो खालिस फ्रांसीसी अंदाज में उर्दू बोल रहा था। दोनों मुसल्ला आदमियों ने उनका सामान उठाया और वहाँ से चल पड़े। चचा हुजूर की अब कैसी तबीयत है? हमीद ने सरदार जेगम से पूछा। इस वक्त एक डॉक्टर दारुल हुकूमत से आया है, सुबह ही मालूम हो सकेगा कि अब कैसी तबीयत है। वो डॉक्टर के अलावा और किसी को अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देते। देखभाल के लिए 3 नर्सें हैं और 2 फैमिली डॉक्टर। मर्ज क्या है जनाब? समदानी ने पूछा। अभी तक मर्ज की तशखीस नहीं हो सकी। वो कार में बैठ गए जिसे जेगम ही ड्राइव कर रहा था। दोनों मुसल्ला आदमी वहीं रह गए। हमीद जेगम के बराबर अगली सीट पर बैठा था। आखिर ये कैसा हंगामा था? मौसिर जेगम, उसने कुछ देर बाद सवाल किया, कहीं से एक भेड़िया आ गया है? भेड़िया क्या? वुल्फ, वुल्फ, मैं नहीं जानता कैसे फ्रांसीसी में क्या कहते हैं। वुल्फ मैं समझता हूँ। बाय गॉड, मैं इसका शिकार करूँगा। ओहो शिकारी भी हैं आप? हाँ मुझको शिकार का शौक है। आप उर्दू करीब करीब खासी बोल सकते हैं? हाँ, मेरी गवर्नेंस का मियाँ लखनवी था। बहुत खूब। गाड़ी अब एक बड़ी इमारत के सामने रुकी थी। ये खुसूसी मेहमान खाना है मोजीन के लिए, सरदार जेगम ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जिनाब आली, समदानी गिड़गिड़ आया। मुझे जिनाब वाला की खुश अखलाकी ने बेहद मुतासिर किया है। मैं इस नमकवार का बेटा हूँ जो इक्तदार दौला बहादुर को खान दौरान की खिदमत में पेश करने के लिए लाया। ओ अच्छा अच्छा, सरदार जेगम ने पुरमेनी अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी। मगर ये भेड़िया जनाबे आली, आप लोग फिलहाल अंदर चलिए। ये हमारा दर्द सर है, आप लोग फिक्र ना करें, अनकरीब इसे खत्म कर दिया जाएगा। मुझे ना भूलिएगा मौसिव, उसके शिकार पर मुझे भी साथ ले चलिएगा। जरूर जरूर, लहजा तंजिया था। वो अंदर आए और इस बार वहीं के दरबार ने उनके सूटकेस उठाए थे। क्या यहाँ और भी मेहमान हैं? हमीद ने सरदार जेगम से पूछा। नहीं, तब तो हम वहीं बेहतर थे, यहाँ तन्हाई में। आपकी तन्हाई रफा कर दी जाएगी, खान जेगम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, सुबह मुलाकात होगी। सरदार जेगम के चले जाने के बाद समदानी ने कहा, ये जगह माकूल मालूम होती है, लेकिन जनाब आली मुझ पर एक करम फरमाए। क्या कहना चाहते हो? हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे। क्यों? ऐसे हालात में आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? आखिर भेड़िया ही क्यों? शेर, चीता, यारिस क्यों नहीं? इन अतराफ के जंगलों में इनकी भी कमी नहीं। हमीद ने इस पर मजीद बात नहीं बढ़ाई थी और वो एक ही कमरे में सोए थे। दूसरी सुबह भारी भरकम नाश्ते से सबका पड़ा। यहाँ के मुलाजमीन उनके आगे पीछे फिर रहे थे। करीबन 10 बजे सरदार जेगम फिर दिखाई दिया। पुरतपाक अंदाज में हमीद से मिला और बोला, अजीब बात है कि फुफी हुजूर और बेबी खान आप लोगों से मिलने पर रजामंद नहीं। खुदारा आप अपना तारुफ भी तो कराइए, समदानी ने कहा। मैं खान जफर या आपका भतीजा सरदार जेखम हूँ। मतलब ये कि चची हुजूर के भतीजे हमीद ने पूछा। जी हाँ, मैं चचा हुजूर से मिलने आया हूँ। उन पर 3 बजे शब से गशी तारी है, होश में आने का इंतजार किया जाएगा, हमीद ने लापरवाही से कहा। यहाँ मेहमानों से ये नहीं कहा जाता कि वो अब तशरीफ ले जाएं, जब तक आप लोगों का दिल चाहे क्याम कीजिए। ओ अच्छा, हमीद ने पुरतफक्कर लहजे में कहा। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये बेबी कान कौन है? इस पर जेगम ने कहका लगाया और हमीद को आंख मारकर समदानी के साथ भी यही बर्ताव किया। हम नहीं समझे जिनाबे आली, जिनके लिए आप चचा हुजूर की खिदमत में पेश होने आए हैं, उनका नाम दुर्दाना है, लेकिन महल में बेबी खान कहलाती हैं, और वो मुझसे नहीं मिलेंगी, हमीद ने बेबसी का मुजाहरा करते हुए पूछा। उनका ख्याल तो यही है, आप इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते। भला मैं उन लोगों को किस तरह आमादा कर सकूंगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो भेड़िए का शिकार, इसमें आप जरूर शरीक होंगे। बस काफी है, अच्छी बात है, अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर बाद आपकी तन्हाई रफा हो जाएगी, किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। वो चला गया और समदानी बेहाल होकर आराम कुर्सी पर गिर गया। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? शादी मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, हमीद ने उसके शाने पर थपकी देकर कहा। इससे बड़ी तोहीन और कोई हो ही नहीं सकती कि बहू बेगम आपसे मिलने से इनकार कर दें। ये बहू बेगम क्या चीज है? आपकी चची हुजूर। मैं चचा हुजूर से मिलने आया हूँ, ये लोग हरगिज नहीं मिलने देंगे। मैं समझ गया, साहबजादी को माँ की हिमायत हासिल है। प्रिंस ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। फ्रांस में मेरी 3-4 महबूबाएं हैं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आप नहीं समझ सकती इन मामलात को। मैं सिर्फ एक ही मामला समझता हूँ, शादी के सिलसिले में बस खामोशी। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ, किसी दूसरे कमरे में चले जाओ। समदानी को कमरे से निकालकर उसने दरवाजा बंद किया और अकबीबाग की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब पहुँच कर जेब से ट्रांसमीटर निकाला। फरीदी से फौरी तौर पर रब्ता कायम हुआ था। हमीद ने उसे पिछली रात से लेकर अब तक की दास्तान सुनाई और बोला, इस बार तो बिल्कुल ही अंधे कुएं में धकेल दिया है, ओवर। कब तक मेरी उंगली पकड़कर चलते रहोगे? खैर अब ये मालूम करो कि इस इमारत से बाहर निकलने की इजाज़त है या नहीं, उसके बाद फिर मुझे कॉल करना, फिर कोई मशवरा दे सकूंगा, ओवर एंड ऑल। हमीद ने फिर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। लिबास तब्दील करके बाहर निकला ही था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी, जिसने आधी आस्तीन की सफेद कमीज और ब्राउन रंग की जीन पहन रखी थी। बड़ी स्मार्ट और दिलकश थी। प्रिंस इफ्तिखार प्लीज, उसने करीब पहुंचकर कहा। हाँ हाँ, क्या आप बाहर जा रहे हैं? इरादा तो यही है, मुझे सरदार जेगम ने भेजा है ताकि आप तन्हाई महसूस ना कर सकें। अपने मुल्क में ये पहला अच्छा आदमी मिला है, हमीद मुस्कुराया। चलिए मैं आपको किला की सैर कराऊंगी, अभी आप बैठिए, मैं बाथरूम तक जाना चाहता हूँ, हमीद ने कहा और उसके साथ सिटिंग रूम तक आया और फिर अपने बेडरूम में वापस आकर दोबारा फरीदी से रब्ता कायम किया। नई सिचुएशन का जिक्र करते हुए मशवरा मांगा। मजे करो, हर जगह तुम्हारी नामाकूल तबीयत के बहलने का सामान हो जाता है, जरूर सैर करो किले की, ओवर एंड ऑल। बहुत अच्छा सरकार, हमीद ने बड़बड़ाते हुए ट्रांसमीटर जेब में डाला और सिटिंग रूम में वापस आ गया। लड़की छोटा सा आईना हाथ में लिए अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। हमीद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आपका लहजा बहुत प्यारा है, वो आईने को वेंटी बैग में डालती हुई बोली। शुक्रिया, मैंने सुना है कि आपकी परवरिश फ्रांस में हुई है। हाँ मामू जील, अल्लाह कितना प्यारा। हमीद मुस्कुराता रहा, वो बाहर निकले। रविश पर सुरख रंग की स्पोर्ट कार नजर आई। आप ड्राइव करेंगे? लड़की ने हंसकर पूछा। मामूजी की मर्जी, मेरा नाम रक्षी है। रक्षी बहुत प्यारा नाम है, हाय रक्षी कहकर तो आपने इसे और भी प्यारा कर दिया। हमीद ने अग्निशन की उससे लेकर इंजन स्टार्ट किया। वो उसके करीब बैठी पक्के आम की तरह महक रही थी। हमीद के जहन में यही तशबीह आई, वरना उसने तो एफडी कॉलोन में खुद को बसा रखा था। जैसे ही कार फाटक से निकलने लगी, एक दूसरी लंबी सी कार ने उसका रास्ता रोक लिया, जिस पर एक चगादरी किस्म का बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने हमीद को गाड़ी रोकने का इशारा किया, खुद उसकी गाड़ी भी रुक गई थी। वो बड़े ठुस्से से नीचे उतरा था उम्र 60 के करीब रही होगी, लेकिन कविया मजबूत थे और छोटी छोटी आंखों में अजीब सी मकराना चमक थी। स्पोर्ट कार के करीब पहुंचकर उसने गुर्राई हुई सी आवाज में पूछा, तुम इक्तदार के बेटे हो? हाँ, मैं इक्तदारुद्दौला का बेटा हूँ और उनके बाद इक्तदारुद्दौला कहलाऊंगा। तुम खुसूसी इजाजत नामे के बगैर मेहमान खाने से बाहर नहीं निकल सकते, वापस जाओ। लड़की आहिस्ते से बोली, वापस चलिए प्रिंस, ये सरदार जेगम के बाप सरदार काहिर हैं। खुदारा वापस चलिए, वापस चलिए। हमीद ने ठंडी सांस लेकर गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दिया। चोर इमारत के अंदर पहुंचकर लड़की ने कहा, मुझे बेहद अफसोस है प्रिंस। अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन लेकिन क्या? मुझे बिल्कुल अफसोस ना होना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया देख सकता हूँ। हाय अल्लाह, खूबसूरत! हाय प्रिंस, कितना प्यारा लव्ज! ये बूढ़ा नाराज क्यों हो रहा था? मुझे खुद भी हैरत है, आपके साथ ये सलूक मेरी समझ में भी नहीं आया। बहुत खौफनाक था। हाँ प्रिंस, वो बहुत खौफनाक है। बेचारे खान तो हमेशा बीमार रहते हैं। किले पर इसकी हुकूमत है। सरदार जहम जो इसका बेटा है, इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये बेबी खान का मामू है। हाँ प्रिंस। अच्छा अच्छा, जरा मैं बाथरूम तक जाऊंगा। कितनी बार जाओगे बाथरूम में? नर्वस होता हूँ तो बार बार जरूरत पेश आती है। तुम नर्वस क्यों हो प्रिंस? इतनी खूबसूरत लड़की सामने होकर नर्वस होना ही पड़ेगा। उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर वो फिर सोने के कमरे में आया और ट्रांसमीटर पर फरीदी से रابطہ कायम करके मौजूदा सिचुएशन बताई। लड़की रात को वहाँ ना रहने पाए, ओवर फरीदी की आवाज आई। अगर वो इस पर अड़ गई तो? अहमद, क्या तुमसे इतना भी नहीं हो सकेगा कि उसे किसी तरह टाल दो? आप मुझे अहमद ही रहने दीजिए। हमीद, संजीदा हो जाओ, ये जरूरी है। बहुत बेहतर जनाब, हमीद ने ठंडी सांस ली। ओवर एंड ऑल। ड्राइंग रूम से वापस आकर उसने देखा कि सरदार काहिर, जिसने उसे बाहर जाने से रोका था, लड़की पर बरस रहा है। तुझे जरूरत कैसी हुई यहाँ कदम रखने की, कुतिया कहीं की? मम्मा, मुझे सरदार जेगम ने भेजा था, लड़की ने जवाब दिया। वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए बुरी तरह कांप रही थी। शरीफ आदमी, हमीद बेहद नरम लहजे में बोला, इस फूल को शबनम चाहिए, आग बरसाने वाला सूरज नहीं। तुम खामोश रहो, सरदार काहिर उस पर उलट पड़ा। किसी सहमी हुई लड़की को देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं एक उदास तन्हा आदमी हूँ। इस लड़की को यही मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ खामोश रहो, सरदार काहिर पैर पटक कर बोला। इतने में समदानी दिखाई दिया, वो दरवाजे में खड़ा सरदार काहिर को घूरे जा रहा था। ओह तुम, सरदार काहिर बेसाख्ता चौंक कर बोला, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया सरदार काहिर, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम पुलिस की शान में गुस्ताखियाँ करो। ये लड़की यहीं रहेगी। तुम शायद नशे में हो, सरदार काहिर का लहजा तंजिया था। नहीं, मैं होश में हूँ और अब देखूंगा कि तुम्हारी झोली में कितने शोबदे हैं। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है। तुम भूल रहे हो, उस भेड़िये की मौत मुझे यहाँ लाई है। भेड़िया? किस भेड़िये की बात कर रहे हो? वही जो दोनों भाइयों के दरमियान इफ्तराक का बाइस बना था। घास खा गए हो तुम, बकवास बंद करो और खुद को जेर हिरासत समझो। जरूर समझूंगा अगर तुम मेरे हाथों से बच गए, समदानी ने कहा और दफतन जेब से .25 का पिस्तौल निकाल लिया, जिसका रुख सरदार काहिर की तरफ था। हमीद अपना सर सहलाता हुआ लड़की से बोला, तुम इधर आ जाओ मेरे पास, ये दोनों आग की जबान में गुफ्तगु करने वाले हैं। हाँ लड़की, तुम उधर जाओ प्रिंस के पास, समदानी घुराया। उसकी पूरी शख्सियत बदल कर रह गई थी। खुश इखलाकी का पेकर शोला जवाला बन गया था। लड़की दौड़ती हुई हमीद के पास आ पहुंची और वो उसका शाना थपकता हुआ बोला, ये दोनों पता नहीं किस बात पर दोएल लड़ रहे हैं। मुझे कहीं और ले चलो प्रिंस, लड़ाई झगड़ा नहीं देख सकते, मुफ्त भी नहीं। हमीद ने हैरत से पूछा। हमीद सरदार काहिर की तरफ देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर कुछ देर कबल पाई जाने वाली दरिंदगी इस तरह गायब हो हुई थी जैसे गद्दे के सर से सींग। उसकी आंखों में हैरत थी और किसी कदर बेतमीनानी की झलकियां भी पाई जाती थीं। हम पूरे 8 साल बाद मिले हैं सरदार काहिर, समदानी उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया और हमीद से बोला, प्रिंस आप इसको मेरे पिस्तौल से कवर किए रखिए, मैं अभी आया। हमीद ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई, सरदार काहिर के दिल का निशाना लेकर खड़ा हो गया। लड़की अब उससे दूर खिसक गई थी। समदानी के चले जाने के बाद सरदार काहिर ने भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारी शादी बेबी खान से हो सकती है अगर मैं चाहूँ। खौफनाक आदमी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। पिस्तौल जेब में रख लो बेटे, मैं बेबी खान का मामू हूँ। मामू क्या होता है? उसकी माँ का भाई। बूढ़ा आदमी मेरा गार्जियन बनकर आया है, मैं उसका कहना मानूंगा। बड़े नुकसान में रहोगे, अब तुम खामोश खड़े रहो। इतने में समदानी वापस आ गया, उसके दोनों हाथ पुश्त पर थे। चंद लम्हे दरवाजे में खड़ा सरदार काहिर को घूरता रहा, फिर लड़की से बोला, तुम्हारी गाड़ी बाहर मौजूद है, फौरन यहाँ से चली जाओ। ठहरो नहीं, सरदार काहिर ने भराई हुई आवाज में कहा, जाओ। समदानी इतने जोर से धाड़ा कि दीवारें तक झंझना उठी। लड़की दौड़ती हुई चली गई। और अप्रिंस, आप इसे कवर किए रखिए, मैं इसके बाजू में एक इंजेक्शन दूंगा और वो इंजेक्शन ही इसे इंसानियत की जामे में लाएगा। हम जैसे मेहमानों की यहाँ बड़ी तोहीन हुई है। ठीक है, तुम इंजेक्शन लगाओ, अगर ये अपनी जगह से हिला भी तो फायर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेबी कान का मामू, हमीद ने कहकर तंजिया कहका लगाया। सरदार काहिर दम साधे खड़ा था, लेकिन इंजेक्शन लगते ही उसके हलक से घुटी घुटी कराह निकली और वो चकराकर गिर पड़ा। सान फ्रांसिस्को, हमीद ने मुतहयर रह जाने की एक्टिंग की और समदानी ने कहका लगाया। मैं आपका खादिम हूँ प्रिंस, वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला और करीब पहुँच कर उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। पहले तुम ये सिरिंज उधर मेज पर रख दो, हमीद ने सर हिलाकर कहा। वो फिर हंस पड़ा और बोला, मैं आपका खादिम हूँ, जो कुछ मैंने किया है इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। होश में आने के बाद ये हमें अपने सर पर बिठाएगा। तुम बहुत गहरे निकले मिस्टर समदानी, मेरे बाप को आपके दादा हुजूर का बॉडीगार्ड होने का शर्फ भी हासिल था। बहुत खूब, बहुत खूब कहिए, मेरे सामने बनने की कोशिश नहीं। आपने अचानक फ्रांसीसी अंदाज में उर्दू बोलनी शुरू कर दी है, सिर्फ उस लड़की के लिए मौसिब, वो जिसे तुमने भगा दिया है। इस लहजे पर निगोड़ मारियां जान देती हैं। ओहो, आप निगोड़ मारियां भी बोल सकते हैं। मेरी अतालिक ससुरालन लखनवी थी। ससुरालन, समदानी से घूरता हुआ बोला। फिर उसने कहा, बराए करम आप लड़कियों को देखकर रेशा खत्मी ना हो जाया कीजिए, यहाँ अब भी ससुराल वाले इसे पसंद नहीं करते। मुझे लव ससुराल ही पसंद नहीं, अजीब सी बदबू महसूस करता हूँ नाम सुनकर। खुदारा खामोश रहिए, दीवारों के भी कान होते हैं, उसने चारों तरफ देखकर कहा। और अचानक पिस्तौल हमीद के हाथ से झपट कर कहा, आपके हाथों में गुलदस्ता ज्यादा हसीन लगेगा जो आप अपनी बीवी को पेश करेंगे। हमीद ने जरा बराबर भी इजहार ना होने दिया कि इस तरह पिस्तौल छीन लेने का इस पर क्या असर हुआ है, वो खौफनाक है। कौन? बेबी खान। समदानी हंसकर रह गया, उसकी तो शख्सियत ही हैरत अंगेज तौर पर बदल गई थी। अचानक सरदार कायर के जिस्म में जुम्बश हुई और समदानी उसके करीब पहुंच गया। वो झुका हुआ बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद सरदार काहिर कराह कर उठ बैठा, चंद लम्हे आंखें मलता रहा, फिर जैसे ही समदानी पर नजर पड़ी, अरे समदानी भाई, कहता हुआ खड़ा हो गया। आप कब आए? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? समदानी ने उसका बाजू पकड़ते हुए नरम लहजे में पूछा। लेकिन मैं यहाँ कहाँ? वो चारों तरफ देखता हुआ हकलाया। भाई, मैंने तुम्हें अपनी आमद की इतला दी थी, तुम आए और इस कमरे में कदम रखते ही बेहोश हो गए। मुझे कुछ याद नहीं समदानी भाई, सरदार काहिर ने खौफजदा लहजे में कहा। कब से बीमार हो? मैं नहीं जानता समदानी भाई। बैठ जाओ, समदानी उसका बाजू पकड़े हुए सोफे की तरफ ले जाता हुआ बोला। मैं एक खास मिशन पर आया हूँ। मुझे जरूर बताओ समदानी भाई, सरदार काहिर ने एक कहा और सोफे पर बैठकर हांफने लगा। ये शहजाद इफ्तिखार हैं, इकतदार उद्दौला बहादुर के बेटे, समदानी ने हमीद की तरफ इशारा किया। जहे अज़ो शर्फ, सदा काहिर उठकर किसी कदर झुकता हुआ बोला और फिर बैठ गया। जिस तरह मेरे बाप इकतदार उद्दौला को यहाँ लाए थे, इसी तरह मैं शहजादा इफ्तिखार को लाया हूँ। तो फिर महल में तशरीफ ले चलिए, आप लोग यहाँ क्यों मुकीम हैं? तुम्हारे बेटे जेगम ने हमारी ये तौकीर की है, मैं उसे गोली मार दूंगा। समदानी भाई, आप दोनों चलिए मेरे साथ। प्रिंस, समदानी हमीद की तरफ मुड़कर बोला, मैं पहले बाथरूम जाऊंगा। जरूर जरूर। हमीद उन्हें वहीं छोड़कर फिर अपनी ख्वाबगाह में आया और दरवाजा बोल्ट करके ट्रांसमीटर निकाला। फरीदी से रब्ता कायम होने में देर न लगी। नए हालात से आगाह होने के बाद फरीदी ने कहा, बहुत अच्छी खबर है खुदारा। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, अब तो मुझे असल हालात से आगाह कर दीजिए, कहीं बेखबरी में कोई गलती न कर बैठूं। ओवर। परवाह मत करो, ओवर एंड ऑल। फरीदी की आवाज़ फिर न सुनाई दी, हमीद उसे पुकारता ही रह गया। वो फिर ड्राइंग रूम में वापस आया। यहाँ वो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को ऐसी पुरशोक और मोहब्बत आमेज नजरों से देखे जा रहे थे कि हमीद को चक्कर आ गया। हमीद की आहट पर चौंके और संभल कर बैठ गए। आप भी तशरीफ रखिए, प्रिंस समदानी भराई हुई आवाज में बोला। दवतन सरदार काहिर उठता हुआ बोला, अच्छा समदानी भाई, अब इजाजत दो, महल जाकर आप लोगों के शाया निशान इस्तकबाल का इंतजाम करूंगा। बहुत अच्छा काहिर भाई, समदानी ने उठकर उससे मसाफिया करते हुए कहा। हमीद की तरफ देखकर सरदार काहिर एहतरामन झुका और तेजी से बाहर निकल गया। समदानी ने अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराकर बोला, 8 घंटे तक ये मुझे इसी तरह समदानी भाई कहता रहेगा, लिहाजा जरूरी है कि 7वां घंटा गुजरते ही इसे दूसरा इंजेक्शन दिया जाए। समदानी चचा, मैं इंजेक्शन के बगैर ही कहने पर तैयार हूँ, हमीद ने बौखलाहट की अदाकारी करते हुए कहा। मैं आपका गुलाम हूँ प्रिंस, आप ही के लिए ये सब कुछ किया है, आपकी तोहीन हुई थी इसलिए गुस्सा आ गया। फिर 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सरदार जगम दिखाई दिया और उसका चेहरा गुस्से से सुरख हो गया था। उसके साथ 2 मुसल्लह सिपाही भी थे जिनके हाथों में रिवॉल्वर नजर आए। मेरे बाप सरदार काहिर कहाँ है, वो पैर पटक कर धाड़ा। काहिर भाई अभी अभी तशरीफ ले गए हैं, समदानी ने नरम लहजे में कहा। तुमने उन पर रिवॉल्वर ताना था, ये क्या बकवास है लड़के, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, मेरा एहतराम करो, वो मुझे समदानी भाई कहकर मुखातिब करता है। हाँ ये ठीक है मोसिर जेगम, मैंने भी सुना था, हमीद बोला। तुम खामोश रहो, जेगम का लहजा अहानत आमेल था। मोसिर जेगम मुझे भी जल्द हरारा आ जाता है, बकवास बंद करो, लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो मुझे छोड़कर चली गई। मोसिफ जेगम, मीर ने मकमूम लहजे में कहा, तुम्हारे फादर कह गए हैं वो हमें जल्द ही महल में ले चलेंगे, देखो बेबी कान कैसी है, शट अप, उसका नाम ना लेना वरना सर तोड़ दूंगा। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो, लड़के दवतन समदानी घुराया, मैं प्रिंस की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब तुम्हारी जबान से कोई नारवा जुमला अदा हुआ तो मेरा थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। जेगम गुराता हुआ समदानी की तरफ बढ़ा ही था कि हमीद बीच में आ गया। जेगम ने उसे धक्का देना चाहा लेकिन हमीद ने चोटक के एक दाव के जरिए उसको मुंह के बल गिर जाने पर मजबूर कर दिया। उसके दोनों मुहाफिज खबरदार खबरदार कहते हुए आगे बढ़े। इतने में जेगम भी दोबारा उठकर हमीद पर झपटा। हमीद अगर एक तरफ हट ना जाता तो इस बार उसे खासी चोट खानी पड़ती। जेगम फौलाद की तरह ठोस था। बॉडीगार्ड ने फायरिंग शुरू कर देने की धमकी दी थी कि समदानी ने कहका लगाकर कहा, सरदार काहिर का बेटा इतना बेबस है कि 2 बंदूकची साथ लिए फिरता है, निकल जाओ चले जाओ। जेगम बॉडीगार्ड की तरफ हाथ उठाकर धाड़ा। वो जहां थे वहीं थम गए और खड़े मुतहयराना अंदाज में पलकें झपकाते रहे। बाहर जाओ वो फिर गरजा, उन्होंने इस बार मशीनी अंदाज में तामीले हुक्म की थी। जेगम फिर हमीद की तरफ झपटा लेकिन इस बार समदानी ने जेब से दोबारा पिस्तौल निकालते हुए सर्द लहजे में कहा, ठहर जाओ ये बदअहदी। जेगम रुककर हाँपता हुआ बोला, अब तुमने पिस्तौल निकाला है, बुजदिल बूढ़ है, लेकिन मेरी नीयत में फतूर नहीं है, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि अभी अभी मुझे इलम हुआ है कि प्रिंस जोडो के माहिर हैं, तुम इनसे पार ना पा सकोगे, दिमाग ठंडा रखो, दीवानगी अच्छी चीज नहीं है। कबल इसके के जेगम कुछ कहता सरदार काहिर कमरे में दाखिल हुआ और उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। फिर जेगम से बोला, यहाँ से चले जाओ बदतमीज, क्या तुम समदानी भाई से झगड़ा कर रहे हो, यकीनन तुमने गुस्ताही की होगी वरना हरगिज पिस्तौल ना निकालते, तुम्हें भतीजा समझकर शफकत से पेश आते। हमीद ने जेगम के चेहरे पर हैरत के आसार देखे और समदानी ने मुस्कुराकर पिस्तौल फिर जेब में डाल लिया। अब जेगम अपने बाप को घूरता हुआ वापस जा रहा था। समदानी भाई इसे माफ कर दीजिए, सरदार काहिर गिड़गिड़ाया। आधे घंटे बाद वो महल के एक खूबसूरत हिस्से में फरोकश थे और सरदार काहिर बड़ी इज्जाजत से कह रहा था, समदानी भाई, बेगम जफरयाब यानी मेरी छोटी बहन यानी बेबी खान की वालदा, हर चंद के इस रिश्ते पर मुत्तफिक नहीं लेकिन मैं उन्हें राजी कर लूंगा, दोनों खानदानों की बेहतरी इसी में है। शाम तक हमीद बोर होता रहा, अपने कमरे से निकला तो सरदार काहिर को फिर बेहोश देखा। वो एक आराम कुर्सी पर पड़ा हुआ था और समदानी उसके करीब ही अखबार बीनी में मसरूफ था। उसकी पुष्ट हमीद की तरफ थी। हमीद खामोश खड़ा रहा, समदानी को इसकी आहट नहीं मिल सकी थी। क्योंकि चारों तरफ यहाँ फर्श पर मोटे मोटे कालीन पड़े हुए थे। हमीद दबे पांव चलता हुआ एक बहुत बड़े आरायशी गुलदान के पीछे जा छुपा। पोजीशन ऐसी थी कि अगर वो दोनों उठकर कमरे में टहलना भी शुरू कर देते तो उन्हें हमीद ना दिखाई देता। कुछ देर बाद उसने सरदार काहिर की भराई हुई आवाज सुनी। समदानी समदानी भाई, मुझे क्या हो गया है? मैं बार बार इस तरह सोने क्यों लगा हूँ? मौसम का असर है, फिक्र न करो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है समदानी भाई? बिल्कुल नहीं। प्रिंस कहाँ है? अपने कमरे में। वो बेकारी में ज्यादातर सोते रहते हैं। खैर अब तुम असल मामले की तरफ आ जाओ। शादी जरूर होगी समदानी भाई। वो तो होगी ही। मैं तुमसे उस आधे सुरख टुकड़े की बात करना चाहता हूँ। खतरा है समदानी भाई, फजूल बातें नहीं। आधा टुकड़ा मुझे हर हाल में चाहिए। वो तो नहीं है मेरे पास, काहिर की आवाज आई। वो तो हर हाल में मुझे चाहिए, वरना बड़ा खून खराबा होगा। तो तलाश करना पड़ेगा समदानी भाई। जरूर तलाश करो, 10 बजे रात तक मुझे मिल जाए। लेकिन समदानी भाई, अगर वो मिल भी गया तो तुम्हें इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। तुम्हारा हर हाल में ख्याल रखा जाएगा। मैं कह रहा था समदानी भाई के वो पुरानी बावली का किस्सा है और अब वहाँ कदम रखना मुश्किल है। क्यों? भेड़िया भेड़िया बावली ही से नमूदार होता है। बकवास है। यकीन करो समदानी भाई, वो उसी भेड़िये की रूह है जो खान दौरा के हाथों मारा गया था। मैं कहता हूँ बकवास मत करो। तुम्हारी मर्जी, मैं तलाश करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो टुकड़ा ना मिला तो तुम्हारे पड़खचे उड़ जाएंगे। तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। बात दरअसल यह है समदानी भाई के, वो जेगम के पास है। जेगम बड़ा गुस्ताख लड़का है और मुझे भी खातिर में नहीं लाता। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन देखो जेगम को इसका इलम ना होने पाए कि मैंने उसका मुतालबा किया है। अरे चोर, दफतन हमीद ने अपनी पुश्त पर किसी लड़की की चीख सुनी और उछलकर खड़ा हो गया। अरे चोर, दफतन हमीद ने अपनी पुश्त पर किसी लड़की की चीख सुनी और उछलकर खड़ा हो गया। ओहो बेबी कान, वेलकम वेलकम, वो सीधा खड़ा होकर खिसियानी हंसी के साथ बोला। काहिर और समदानी उठ खड़े हुए थे। दुर्दाना ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये शहजादे साहब इधर छुपे हुए आप लोगों की गुफ्तगु सुन रहे थे। मैं हर वक्त उर्दू सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने सोचा शायद ये लोग गुफ्तगु में नए नए मुहावरे इस्तेमाल करें, इसलिए मुझे फायदा उठाना चाहिए, हमीद ने कहा और झटाई से हंसने लगा। भेड़िये का हमला। हमीद हंसे जा रहा था और वो सब दम बखुद खड़े थे। दुर्दाना की नज़र अपने मामू सरदार काहिर की तरफ थी और वो किसी कदर मुतहय्यर भी दिखाई देती थी। दफतन सरदार काहिर ने हमीद से कहा, प्रिंस ऐसी बात थी तो आपको हमारे पास बैठना था। ओहो तुम समझते नहीं सरदार काहिर, प्रिंस दूसरों को मुतहय्यर कर देने में बेहद लज्जत महसूस करते हैं, इसे इनकी हाबी समझ लो। अच्छा ये बात है समदानी भाई, सरदार काहिर हंसने लगा और हमीद ने महसूस किया जैसे दुर्दाना उसे पागल समझ रही हो। अचानक दुर्दाना बोली, मुझे हैरत है मामू हुजूर। किस बात पर हैरत है बेटी? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी पूरी शख्सियत बदल कर रह गई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं बेटी, मैं और समदानी भाई बचपन से एक दूसरे से वाकिफ हैं। तो क्या ये वाकिफ प्रिंस इफ्तिखार हैं? हाँ बेटी, भला इसमें शुबह की गुंजाइश कहाँ। फिर वो मजीद कुछ कहे सुने बगैर वापस मुड़ गई। हमीद इस मौके को जाया नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से तो दोबारा सामना हुआ था। वो उसके पीछे चल पड़ा और लान पर पहुँच कर ही दुर्दाना को मालूम हो सका कि कोई इसके पीछे आ रहा है। वो रुक कर मुड़ी और पुरतनफर लहजे में बोली, तुम कोई भी हो, मुझे तुमसे कतन दिलचस्पी नहीं। कम अज कम फ्रांस में तो ऐसा नहीं होता, लड़कियाँ इतनी बेमुरवती से पेश नहीं आती। तो फिर यहाँ मरने क्यों आए हो? फ्रांस ही वापस जाओ, मरना तो यही है, लड़कियाँ लिख दें या ना दें। मेरे पीछे मत आओ, कम अज कम चची हुजूर से तो मिल ही लूँ। वो नहीं मिलना चाहती। चचा हुजूर की कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है, लेकिन कोई उनसे मिल नहीं सकता। अच्छा तो मेरी तस्वीर ही उन तक पहुँचा दो। क्यों? उन्हें इत्मीनान हो जाए कि मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। तुम वो तहकीर आमेज अंदाज में हंस पड़ी, नहीं हूँ घसियारे मालूम होते हो, ये क्या होता है, मैं घसियारे के मैनी नहीं जानता, अपनी किसी मकामी गर्लफ्रेंड से पूछ लेना। बेबी कान, मैंने साधुओं की सी जिंदगी गुजारी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हालांकि तुम सूरत से ही बदमाश लगते हो, तुम्हारे ही परदादा मेरे भी थे। शट अप, अमित कुछ कहने ही वाला था कि जेगम आता दिखाई दिया। दुर्दाना मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी, इसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। जेगम हमीद को घूरता चला आ रहा था, करीब पहुँच कर धाड़ा, यहाँ कयाम करने का मतलब ये नहीं कि तुम जहाँ चाहो आजादी से घूमते फिरो। मेरे चचा हुजूर का महल है, हमीद ने सर्द लहजे में कहा, चले जाओ। वो उसके एकामती हिस्से की तरफ हाथ उठाकर धाड़ा। मौसिर जेगम, बदतमीजी नहीं, बस इतना ही काफी था। जेगम दोपहर की हजीमत का बदला लेने के लिए हमीद पर झपट पड़ा। हमीद पहले ही से उसके लिए तैयार था, कनाई काट कर उसका वार खाली दिया और फिर जो एक दाव जोड़ो का लगाया है तो जेगम उछल कर दूर जा गिरा। बारी भरकम आदमी था इसलिए फुर्ती से उठ न सका और हमीद दुर्दाना की तरफ मुड़कर बोला, ये बहुत बेवकूफ आदमी है, इसे यहाँ से ले जाओ वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं तुझे पीस कर रख दूंगा, जेगम उठता हुआ चीखा। सचमुच इस बार झपटने का ऐसा ही अंदाज था जैसे मरने मारने की छान ली हो। हमीद फुर्ती से झुका और उसे अपनी पुश्त पर उठाकर फिर दूर फेंक दिया। दुर्दाना खड़ी हैरत से पलकें झपका रही थी। सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था, धुंधलका फैलने लगा था, लेकिन अभी इतनी रोशनी थी कि वो दूर से भी पहचाने जा सकते। इस बार जेगम उठा तो खाली हाथ नहीं था, उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। हांफता हुआ बोला, अब तुम जमीन पर नाक रगड़ो वरना गोली मार दूंगा। जेगम भाई ये बुजदिली है, जफतन दुर्दाना बोली। जेगम भाई ये बुजदिली है, जफतन दुर्दाना बोली, तुम चुप रहो अंदर जाओ। इतने में बरामदे में समदानी की ललकार सुनाई दी, देखो काहे तुम्हारे लड़के ने प्रिंस पर रिवॉल्वर तान रखा है, ये इतना झगड़ालू क्यों है। उसके बाद वो दोनों झपटते हुए लान पर पहुंचे थे। जेगम तुम्हारे दिमाग तो नहीं चल गया, रिवॉल्वर होल्स्टर में रख लो, काहिर ने कहा। आप अंदर जाइए, मैं यहाँ के नज्म नस्क का जिम्मेदार हूँ, जेगम का जवाब था। जेगम बेटे, काहिर ने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू, थप्पड़ रसीद कीजिए मामू जान, ये खुद को क्या समझते हैं। दुर्दाना भपड़ गई। शट अप जेगम दाड़ा, तुम सब अंदर जाओ वरना अपनी बेइज्जती के खुद जिम्मेदार हो गए, चलो जाओ। उसने बड़े डरावने अंदाज में अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को जुम्बश दी थी। चलो चलो, समदानी ने महमूम लहजे में कहा। चलो चलो, समदानी ने मगमूम लहजे में कहा, इस वक्त इसी का कहना कर दो, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं मालूम होती। तुमसे तो मैं अभी निपटता हूँ, जेगम ने समदानी को धमकी दी। बुजुर्गों के मुंह नहीं आया करते बेटे, मालूम नहीं तुम्हारी तरबियत कैसे हुई है। तो चलो समदानी भाई, काहिर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा है। वो सब जेगम को वहीं छोड़कर अंदर आ गए थे। दुर्दाना काहिर को घूरे जा रही थी और काहिर दोनों हाथों से सरथा में बैठा फर्श को तक रहा था। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, दुर्दाना बुड़बड़ाई। जागते में हमीद ने पूछा, नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे जमीन अपने महवर से हट गई हो। ये मामू जान है, उन्हें क्या हो गया है, ये तो इस वक्त जेगम भाई की खाल उतार देते। अल्लाह जब चाहता है हिदायत दे देता है, समदानी ने कहा। नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं आता, दुर्दाना उसे घूरती हुई बोली। चंदलम है, चंदलम है, कुछ सोचती रही फिर हाथ उठाकर बोली, तुम भी बिल्कुल बदले हुए नजर आते हो, जब मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था तो तुम कुछ और थे। कबल इसके के समदानी कुछ कहता, हमीद बाथरूम के बहाने वहाँ से निकल खड़ा हुआ। उसे फिर फरीदी से राब्ता कायम करना था। हालात कुंजलक हो गए थे। समदानी हद दर्जा पुरस्कार साबित हुआ। उसकी शख्सियत ही बदलकर रह गई थी। हमीद ने परिधि को ताज़ा तरीन हालात से आगाह करते हुए पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। दोनों पर कड़ी नजर रखो, फरीदी ने जवाब दिया। ये भी मालूम करने की कोशिश करो कि उन दोनों के दरमियान इस गुफ्तगू का मकसद क्या था। तुम ये सवाल बराह रास्त शमसानी से भी कर सकते हो। आखिर ये भेड़िया क्या बला है, हमीद ने पूछा। बेसब्री अच्छी चीज नहीं, जल्द मालूम हो जाएगा, ओवर एंड ऑल। गुफ्तगू खत्म करके हमीद फिर ड्राइंग रूम में वापस आया। समदानी तन्हा था। हमीद को देखकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, प्रिंस चुप कर, हमारी गुफ्तगू सुनने की जरूरत नहीं थी। मुझे आपके साथ भेजने में इक्तदार दौला बहादुर की कुछ मसलहत और भी थी। अगर कुछ हर्ज ना हो तो मैं भी उनके बारे में जानना चाहूंगा, हमीद ने किसी घुन्ने बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। समदानी कुछ कहने ही वाला था कि दुर्दाना खान कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। आप लोग यहाँ से फौरन चले जाइए, वो हाँपती हुई बोली। समदानी उसे देखते ही खड़ा हो गया, लेकिन हमीद नहीं उठा था। उसने सर्द लहजे में सवाल किया, क्यों? जेगम भाई बेहद खतरनाक आदमी है, उन्होंने मामू हुजूर को एक कमरे में बंद कर दिया है और आप लोगों की फिक्र में है। आखिर क्यों, समदानी बोला। मैं नहीं जानती, मुझे चची हुजूर के पास ले चलो, हमीद ने उससे कहा। ये भी नामुमकिन है, तो फिर मैं यही मर जाऊंगा। इक्तदारुद्दौला का बेटा इतना बुलदिल नहीं हो सकता कि मैदान छोड़कर भाग जाए। अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो। यह हो सकता है, हमीद ने समदानी की तरफ देखते हुए कहा। आप जाइए प्रिंस, मैं यहीं रहूंगा और अपने दोस्त काहिर को इस जालिम के पंजे से रिहाई दिलाऊंगा। अच्छा अच्छा, हमीद सर हिलाकर बोला और दुर्दाना के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद इस तब्दीली की इत्तला भी फरीदी को देनी पड़ी थी। दुर्दाना ने उसे इमारत के एक दूर अफ्तादा हिस्से में छोड़ा था और कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। वापस आई तो पहले से भी ज्यादा परेशान थी। मुझे तो इस बेगम से नफरत हो गई है, तुम वाकई बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, उसने कहा। दिल दुखाने के बातें ना करो, मैं तो बहुत बुरा हूँ। जेगम की तरह बुजदिल तो नहीं हो, उसने समदानी साहब को मार डालने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी तरफ निकल गए। ओहो, अच्छा, हमीद बौखला कर खड़ा हो गया। वो उनसे किसी चीज का मुतालबा भी कर रहा था। किस चीज का, ये तो मैं नहीं जानती, मैंने दोनों की गुफ्तगू सुनी जरूर थी, लेकिन दोनों ही मुभिम अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मतलब बेगम ने समदानी साहब से कहा था, मैंने अब्बा जान से सब कुछ मालूम कर लिया है, तुम जिंदा बच कर नहीं जा सकोगे, लाओ आधा टुकड़ा मेरे हवाले कर दो। ओहो, फिर क्या हुआ, ऐसा फुर्तीला बूढ़ा आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और गायब हो गया। जेगम के आदमी उसे चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तन्हा रह गया। तुम मेरे चचा के बेटे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे तुम भी तो भेड़िये की तरह गुर्राती हो, दुर्दाना हंस पड़ी। फिर बोली, वो तो मजाक था, लेकिन मुझे इस गुर्राहट के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। ऐसा क्यों करती हो, मजबूरन मुझे सुबह देर तक सोने की आदत है, अम्मी हुजूर इसकी मुखालिफ हैं। मेरी खादमा को हुक्म है कि सूरज तुलू होने से पहले मुझे उठा दिया करे। अब आलम यह है कि जहाँ उसने मुझे जगाने की कोशिश की, मैंने गुर्राना शुरू कर दिया। बाग खड़ी होती है और अम्मी हुजूर से कह देती है कि वो उनका हुक्म बजा लाई है। बहुत चलाक हो, हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। और मेरी खादमा ये समझती है कि इस गुर्राहट का ताल्लुक पुरानी बावली वाले भेड़िए से है। ये बावली वाला भेड़िया क्या मुसीबत है, लोगों का ख्याल है कि ये उसी भेड़िए का भूत है जो दादा हुजूर की राइफल का निशाना बना था और तुम्हारे दादा खोआ मखा बोर हो गए थे। सच कहती हूँ, मुझे इस कहानी पर बहुत हंसी आती है। हंसी क्यों आती है, आखिर ये लोग इतने अहमक क्यों हुआ करते हैं, इतनी जरा सी बात पर इस हद तक नाचाती। नहीं, उन्हें कुछ न कहो, वो बहुत प्यारे और सच्चे लोग थे, खुलकर नफरत करते थे और पागलों की तरह एक दूसरे को चाहते थे। अब तो कुछ भी नहीं रहा, ना नफरत ना मोहब्बत, लोग मसलहतन एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और जिंदगी भर अदागारी करते रहते हैं। तुम बहुत गहरी बातें भी कर सकते हो, वो दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ बोली। मेरी समझ में नहीं आता, کہ میں سمجھانے کے لیے کیا کروں. حمید نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی. اگر ان کے مقدر میں موت لکھی ہے تو زیغم کے ہاتھ سے ضرور مارے جائیں گے. مجھے حقیقتاً اپنے ماموں اور زیغم سے بے اندازہ نفرت ہے, لیکن امی حضور کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے. تمہیں ان دونوں سے نفرت کیوں ہے میں نہیں جانتی. اچھا بھیڑیے کے بارے میں بتاؤ, اور یہ پرانی باولی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات ہوئی. وہ اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر ہنسی اور پھر بولی, یہاں دھری رہ گئی اردو کی ساری قابلیت. اب بلاؤ اپنی اطالق کے لکھنوی میاں کو, تم ہی بتا دو اے میری بنت ام. پرانے زمانے میں بڑے بڑے کنویں بنوائے جاتے جن کے اندر چاروں طرف پانی سے کچھ اوپر کمرے اور دلانے تعمیر کی جاتی تھیں, جن میں گرمیوں کی دوپہریں گزاری جاتی تھیں. اوہو, تو یہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ ہاں ہاں, وہی پرانی باولی کہلاتی ہے, لیکن عرصہ دراز سے اسے استعمال نہیں کیا گیا. پہلے ہی سے آسیب زدہ تھی. اب وہاں کسی بھیڑیے کا بھوت بھی آ بسا ہے. وہ کب سے آیا ہے؟ غالباً پچھلے 3 سال سے. کیا محل والوں پر بھی اس نے کبھی حملہ کیا ہے؟ نہیں تو پھر وہ اس بھیڑیے کا بھوت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی. قلعے کے عوام یہی کہتے ہیں کہ وہ بھوت ہے, اور محل والے اس کی تردید کرتے پھرتے ہیں تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو سکے. ہمارے سپاہیوں نے کئی بار اس کا تعاقب کر کے اس پر گولیاں بھی چلائی ہیں, لیکن وہ اب بھی زندہ ہے. میں اس کو ماروں گا اپنے 410 کے کھلونے سے. اس کی ہنسی نہ اڑاؤ, وہ بہت خوفناک چیز ہے. اچھا اب میں جا رہی ہوں, یہاں سے نکلنا نہیں ورنہ تم خود ہی کسی حادثے کے ذمہ دار ہوگے. نہیں نکلوں گا. وہ چلی گئی. حمید نے پھر ٹرانسمیٹر نکالا, لیکن اس بار فریدی سے رابطہ قائم نہ ہو سکا. آدھے گھنٹے تک تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ اسے کال کرتا رہا, لیکن ناکامی ہی ہوئی. اس کے بعد دردانہ پھر آ گئی اور اسے یہ سلسلہ ختم کرنا پڑا. وہ اس کے لیے ایک بڑے سے ناشتہ دان میں کھانا لائی تھی. سمدانی کا پتہ چلا. حمید نے اس سے پوچھا, زیغم بھی غائب ہو گیا ہے, تم جلدی سے کھانا کھا لو, پھر میں تمہیں یہاں سے بھی لے چلوں گی. اوہو, اب میں چوروں کی طرح زندگی بسر کروں گا. جو میں کہوں کرتے رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا. اچھا اچھا, کیا تم نہیں کھاؤ گی میرے ساتھ؟ چلو میں بھی کھا لوں گی, جلدی کرو. کھانے کے دوران میں خاموشی رہی. اس کے بعد حمید نے تمباکو نوشی کے لیے پائپ نکالا ہی تھا کہ وہ بول پڑی, نہیں یہاں نہیں, تمہاری مرضی. حمید نے پائپ کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا. وہ دونوں اکبی دروازے سے باہر نکلے. باہر گہرا اندھیرا تھا. اس حصے میں کہیں بھی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی. حمید نے اپنی چھوٹی سی دو نالی بندوق کوٹ کی داہنی آستین میں چھپا رکھی تھی. وہ عمارات کے سلسلے سے دور ہوتے گئے. اچانک انہوں نے کسی مرد کے رونے کی آواز سنی جو ان کے چلنے ہی کی سمت سے آ رہی تھی. دونوں رک گئے. آواز قریب ہوتی جا رہی تھی. میرے مہمان, میرے مہمان, ہائے میرے مہمان, خداوندہ میں کیا کروں, ہائے روسیہ ہو گیا. اور پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا گیا. یہ زیغم بھائی کی آواز ہے, دردانہ آہستہ سے بولی. ہمیں پھانسنے کے لیے جال پھیلایا ہے اس نے. خدا جانے, دردانہ کا لہجہ پرتشویش تھا. وہ ایک درخت کے موٹے سے تنے کی اوٹ میں ہو گئے, اور زیغم دھاڑے مار مار کر روتا ہوا ان کے قریب ہی سے گزر گیا. حمید سوچ رہا تھا کہ کہیں سمدانی کا داؤ نہ چل گیا ہو, لگا دیا ہو اس کے بھی انجیکشن. آدمی تھا یا بھوت, لیکن اب وہ خود کہاں ہوگا. باپ بیٹے دونوں ہی قابو میں آ گئے. لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا چکر ہے؟ باولی اور ریشم کے ٹکڑوں کا کیا قصہ ہے؟ زیغم کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی. دفتن اس نے دردانہ سے کہا, ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ کیا تم نہیں سن رہے؟ وہ بہت دور نکل چکا ہے. گراہٹ کی آواز. حمید نے زیغم کی آواز کی طرف سے توجہ ہٹائی ہی تھی کہ گراہٹ بھی سن لی. یہ گراہٹ بھی قریب کی نہیں تھی, سمت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا. بہتر ہوگا کہ اب ہمیں یہیں ٹھہر کر اس کا بھی انتظار کریں, حمید نے کہا. مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے. بالکل نہ ڈرو, 410 بور کا کھلونا میرے پاس موجود ہے. گراہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی, اور اب حمید سمت کا تعین بھی کر سکتا تھا. آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا انہیں کی سمت آ رہا ہے. حمید نے پھرتی سے بندوق نکالی اور آواز کی سمت فائر کر دیا. گراہٹ کا سلسلہ یکلخت ٹوٹ گیا. ऐसा लगा जैसे फायर की आवाज ने भेड़िये के कदम रोक दिए हैं। लेकिन हमीद की छठी हिस्स पूरी तरह बेदार हो गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि वो बे आवाज आएगा। उसने उसी दिन दूसरा फायर भी कर दिया। इस बार भेड़िये की आवाज गुर्राहट से मुख्तलिफ थी और ये मुसलसल आवाज तेजी से दूर होती चली गई। इस बार जख्मी होकर भागा है, हमीद बड़बड़ाया। मुझे तो नहीं दिखाई दिया था, तुमने कैसे देख लिया? मैं आवाज पर निशाना लगाता हूँ। अचानक दौड़ते हुए कदमों की आहट हुई और वो चौंक पड़े। दौड़ने वाला चीखने लगा था, कौन फायर कर रहा है? सामने आए प्रिंस समदानी साहब। जीगम भाई, दुर्दाना आहिस्ता से बोली, शायद फायरों की आवाज़ सुनकर पलट आए हैं। समदानी साहब, प्रिंस खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मेहमानों का एहतराम करना चाहिए था, बेगम बुलंद आवाज में कह रहा था। मैं तो अब इससे मिलूंगा, हमीद आहिस्ते से बोला, कहीं धोखा ना हो। कुछ भी हो, धोखा हुआ तो गोली मार दूंगा, हमीद ने कहा और बेगम को आवाजें देने लगा। प्रिंस आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। क्या आपने फायर किए थे? हाँ, भेड़िया मेरा पीछा कर रहा है। आप फिक्र ना करें, वो मेरा पालतू भेड़िया है, बेगम की आवाज आई। खुदा बंदा, दुर्दाना ठंडी सांस लेकर बोली, मैं तसव्वुर भी ना कर सकती। अच्छा, अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, हमीद ने उससे कहा, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे। मेरे ख्याल से भी यही मुनासिब है, लेकिन तुम होशियार रहना, दुर्दाना ने कहा और उसके पास से हट गई। इतने में बेगम उसी दरख्त के करीब पहुँच गया जिसके नीचे हमीद खड़ा था। बेगम ने टॉर्च रोशन की और हमीद पर नजर पड़ते ही गिड़गिड़ाने लगा। हमीद ने उसका शाना थपकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना अजीज समझता हूँ। अचानक बाई जानब से समदान की आवाज आई, बेगम मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, खुदा सबको नरम दिली अता करे। करीब पहुंचकर उसने बेगम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ और प्रिंस आप जाकर आराम कीजिए। फिर हमीद वहीं खड़ा